जिया का कॉल आने के बाद शिवी तैयार होने के लिए अंदर गई। उसने ब्लैक बॉडीकॉन शॉर्ट ड्रेस पहना और उसके नीचे ब्लैक लॉन्ग शूज पहने थे। ठंड से बचने के लिए उसने उसके ऊपर ब्राउन कलर का ओवरकोट लिया था। जिया हमेशा मेरे बालों को लेकर ताने मारती रहती है, आज कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखती हूँ। शिवी ने अपने बालों को हाई पोनीटेल में बांध लिया। वो उस लुक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवी ने अपना बैग उठाया और जाने के लिए बाहर आ ही थी कि उसके पास आर्या का कॉल आया। ये बार बार मुझे क्यों कॉल करता रहता है? कहीं इसे फिर से मुझसे कोई रेसिपी तो नहीं पूछनी, शिवी ने सोचा और फिर कॉल पिक किया। कहाँ थी तुम पूरे दिन? मैंने तुम्हें दो बार कॉल किया था और तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके फ़ोन उठाते ही आर्या शिकायतें करने लग गया, जैसे वो उसे हमेशा से जानता हो। ऑफिस में बिजी थी यार, अचानक शिवी के मुंह से निकला। तुमने बताया नहीं तुम्हारी जॉब लग गई। पिछली बार तुमसे बात की थी कब तुम किसी इंटरव्यू के बारे में बात कर रही थी। सिलेक्शन हो गया क्या? आर्या ने पूछा। हाँ हो गया, पर मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। बाकी की डिटेल्स बाद में शेयर करूंगी। अभी मुझे कहीं जाना है और मैं लेट हो रही हूँ, शिवी ने उसको टालने के लिए कहा। वो कॉल कट करने को ही थी तभी आर्या जल्दी से बोला, अच्छा ठीक है, पर ये तो बता दो कहाँ जा रही हो। क्यों, तुम्हें भी मेरे साथ आना है क्या? शिवी ने हंसकर कहा। वैसे आ भी सकता हूँ क्योंकि मैं इस टाइम फ्री हूँ, कहो तो तुम्हें पिक करने आ जाऊँ। आर्या गाड़ी में था और अपने घर को जा रहा था। अरे नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं। जिया ने तुम्हें देखा तो वो तो पागल ही हो जाएगी, तुम नहीं जानते पर उसे तुम पर क्रश है। शिवी की बात सुनकर आर्या हौले से मुस्कुराया। हाँ मैं उससे मिला था और ये उसके देखने के तरीके से ही समझ आ जाता है। शिवी आर्या से बात कर रही थी तभी उसके फ़ोन पर जिया का फिर से कॉल आया। जिया कॉल कर रही है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, शिवी ने आर्या को बाय कहा और जिया का कॉल पिक किया। अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा है, वहाँ कुछ इंडियन सिंगर्स भी आए हुए हैं, लुजियाना हॉल में उनका कॉन्सर्ट हो रहा है। अब अगर महारानी साहब तैयार हो गई हैं तो हम उसे लेने आ जाएं? जिया ने पूछा। हाँ मैं तैयार हूँ, तुम लोग आ सकते हो, कहकर शिवी ने कॉल कट कर दिया। उसने आर्या को मैसेज करके कॉन्सर्ट के बारे में बताया। मैसेज करने के बाद शिवी ने खुद से कहा, मैंने इसे मैसेज करके क्यों बताया? मुझे इससे दूर रहना है और मैं खुद ही इसे अपने पास बुलाने लगी। आई विश कि वो वहाँ ना आए। खुद से बातें करते हुए शिवी अपार्टमेंट के बाहर आई। कुछ देर बाद ईशान और जिया भी वहाँ पहुँच चुके थे, वो उनके साथ कॉन्सर्ट के लिए निकल गई। वहीं शिवी का मैसेज देखने के बाद आर्या ने अपने ड्राइवर से कहा, तुम ऐसा करो कैब लेकर घर चले जाओ, मैं ड्राइव कर लूँगा। बड़े सर ने मना किया है, उन्होंने मुझे ड्यूटी दी है, मैं आपको ड्राइव करने नहीं दे सकता, ड्राइवर ने जवाब दिया। बड़े सर से उसका मतलब विक्रम सिंह ओबेरॉय से था। आप उन्हें बोल देना कि तुमने मुझे ड्रॉप कर दिया है, मुझे कहीं और जाना है। आपकी तबीयत ठीक है ना? आपने ड्रिंक तो नहीं कर रखी या आप किसी क्लब में जा रहे हैं? आर्या को ड्राइव करने देने से पहले ड्राइवर ने कुछ ज़रूरी सवाल पूछे। ये सब करने के लिए उसे विक्रम जी नहीं कहा था। एली के जाने के बाद से ही वो उसकी सेफ्टी को लेकर कुछ ज़्यादा ही सचेत हो गए थे। उसके सवालों को सुनकर आर्या इरिटेट हो गया। दादू को बोल देना मैं हार्ड ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो वो हर पल मेरी निगरानी करेंगे। अब चुपचाप गाड़ी की चाबी दो और जाओ यहाँ से, आर्या ने हल्के गुस्से में कहा। ड्राइवर गाड़ी से बाहर आ गया और वहाँ से टैक्सी लेकर चला गया। आर्या ड्राइविंग सीट पर था। इसके बारे में भी दादू से बात करनी होगी, लेकिन फिलहाल मुझे भी उसे कॉन्सर्ट में जाना है, आर्या ने खुद से कहा और ध्वनि को कॉल मिलाया। तुम्हारे पास एग्जैक्टली 40 मिनट हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, हम म्यूज़िक कॉन्सर्ट के लिए निकल रहे हैं। पर तुम ऐसी जगह पर कब से जाने लगे? ध्वनि ने हैरानी से पूछा। ये तो मुझे भी नहीं पता मैं क्यों जा रहा हूँ, पर मुझे जाना है, अब जल्दी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, कहकर आर्या ने कॉल कट कर दिया और अपनी गाड़ी ध्वनि के घर की तरफ बढ़ा दी। वो काफ़ी फास्ट ड्राइव कर रहा था। उधर ध्वनि उसके इस बर्ताव को देखकर हैरान थी। सबसे पहली बात तो ये कि इसे गाड़ी किसने दी? खुद गाड़ी चला रहा है, मतलब गुस्से में है। ये अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? मुझे टेंशन हो रही है, कहीं इसका किसी से झगड़ा तो नहीं हुआ? जो भी हो, मैं इसे इस हालत में अकेले नहीं छोड़ सकती, मेरा बिल्कुल मन नहीं है, पर फिर भी मुझे इसके साथ जाना ही होगा। ध्वनि तैयार होने चली गई। कुछ ही देर बाद आर्या वहां पहुंच गया। वो दोनों म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने के लिए निकल गए। रास्ते में ध्वनि ने बहुत बार उसका वहां जाने का कारण पूछा, लेकिन आर्या ने उसे कुछ नहीं बताया। ध्वनि और आर्या लंदन के लुसियाना हॉल के अंदर थे। इस तरह के म्यूजिक कॉन्सर्ट होते रहते थे। वहां कोई इंडियन पॉप स्टार अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। रॉक म्यूजिक होने की वजह से शोर बाहर तक आ रहा था। अंदर की तरफ जाते हुए ध्वनि ने कहा, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा तू मुझे इस तरह की जगह पर लेकर आया है। तुझे तो शांति पसंद है, फिर इस शोर में तू कैसे रह सकता है? पागल थे ही गयो? ज्यादा सवाल मत पूछो और चुपचाप अंदर चलो। और हाँ, हमें वहां जाकर एक लंबे वेवी हेयर वाली इंडियन लड़की को ढूंढना है, लगभग तुम्हारे जितनी हाइट की होगी, दिखने में भी खूबसूरत है, होना हो उसने अपना वो पिंक स्वेटर भी पहना होगा। आर्या भानी को शिवी के बारे में बता रहा था। उसने जिन भी फीचर्स को बताया था वो शिवी से मिलती थी। उसकी बात सुनकर ध्वनि के कदम वहीं रुक गए। उसने आर्या का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, कहीं तुम उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे जिसकी वजह से तुमने इंडियाना रेस्टोरेंट खरीदा था? हाँ, उसी की बात कर रहा हूँ, हमें यहाँ उसी को ढूंढना है। डिस्गस्टिंग आर्या, तुम उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए, वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि तुमने उस दिन उसको हरा दिया था। तुझे नहीं पता मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही थी और तेरी वजह से मुझे सब छोड़कर यहाँ आना पड़ा। मुझे लगा तुम परेशान हो, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए और तुम यहाँ अपनी जिद और घमंड के चलते उस लड़की को। ध्वनि को आर्या पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो लगातार उसे डांटे जा रही थी। आर्या ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, अब बस भी कर, मैं यहाँ उससे मिलने के लिए आया हूँ, ना कि उसे कुछ चताने के लिए। तू ऑफिस नहीं आ रही इसलिए नहीं बता पाया, मैं उससे इन दिनों में 2 से 3 बार मिल गए चुका हूँ और हमारी दोस्ती नहीं अभी दोस्ती नहीं हुई, पर मुझे उससे दोस्ती करनी है। आर्या के दिल में जो भी था उसने सीधे सीधे ध्वनि को बता दिया। आर्या की बात सुनकर ध्वनि आश्चर्य से उसकी तरफ देख रही थी। उसने आर्या के माथे पर हाथ रखकर कहा, देख तू ठीक है ना? अगर तुझे फिर से स्ट्रेस हो रहा है या तू ओवरथिंकिंग कर रहा है तो हम साइकाइट्रिक के पास चल सकते हैं। बकवास मत कर, आर्या ने उसका हाथ झटक कर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब शिवी को ढूंढने में मेरी हेल्प कर और उसे यही बोलना कि तुम मुझे यहाँ लेकर आई है। यहाँ घुसने के लिए टिकट भी परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ेगा। अगर तूने कुछ भी गड़बड़ की तो इन टिकट के पैसे तू ही देगी। ध्वनि को सब समझाने के बाद आर्या वहां से काउंटर की तरफ जाने लगा। उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर चिल्ला कर कहा, और हाँ, तुम ही मुझे यहाँ लेकर आई है, मैं घर जा रहा था पर तेरे कहने पर यहाँ तक आ गया।
ध्वनि आर्या को वहां से जाता हुआ देख रही थी। उसने मन ही मन बड़बड़ा कर कहा, समझ नहीं आ रहा इस बात की खुशी मनाऊं कि तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है या इस बात का दुख तू एली के बाद शिवनंदिनी अय्यर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। मैंने उस लड़की को तुमसे दूर रहने के लिए कहा था और तुम दोनों दोस्त बन गए। अब तुझे सच का पता चलेगा तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। हे भगवान, बचा लेना मुझे भी और मिस अय्यर को भी। ध्वनि असमंजस की स्थिति में वहां खड़ी सोच रही थी, तभी आर्य टिकट लेकर वहां आ गया था। उन्हें अंदर एंट्री मिल गई। अंदर काफी भीड़ थी, फिर भी आर्या और ध्वनि को शिवी को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। आर्या के साथ ध्वनि को देखकर शिवी के चेहरे पर घबराहट थी, वहीं जिया आर्या को वहां देखकर खुश हो गई। ईशान और ध्वनि भी अचानक एक दूसरे से मिले थे तो उन दोनों के चेहरे पर भी खुशी के भाव थे। अरे, तुम इसी कॉन्सर्ट में आई थी, पहले बता देती तो साथ आ जाते, मैंने तुमसे पहले ही पूछा था, हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई। एक्चुअली ध्वनि ने हमारे लिए भी यहाँ से टिकट बुक करवाई थी, मेरा बिल्कुल मन नहीं था पर इसकी जिद के आगे किसकी चलती है। आर्या शिवी को वहां आने के लिए सफाई दे रहा था, फिर उसने ध्वनि के कोहनी मारकर कहा, है ना ध्वनि? ध्वनि ने हाँ में सिर हिलाया और शिवी की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मैं आर्या की फ्रेंड ध्वनि हूँ। आर्या ने जैसा तुम्हारे बारे में बताया था तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। हाँ, आज ही बिल्कुल अलग लग रही है, वरना हमेशा इसके बाल खुले और उलझे हुए रहते हैं। आज तुमने अपना पिंक स्वेटर भी नहीं पहना, पर इसमें भी तुम अच्छी लग रही हो, आर्या ने शिवी की तरफ गौर से देखकर कहा। शिवी को समझ नहीं आ रहा था वो उन्हें क्या प्रतिक्रिया दे, वो चुपचाप खड़ी थी। तभी ईशान ने बात को बदलते हुए कहा, बातें तो हम बाद में भी कर लेंगे, अभी कॉन्सर्ट एंजॉय करते हैं। सबने उसकी बात पर सहमति जताई। परफॉर्मेंस कर रहे रॉकस्टार के जाने के बाद सामने एक लड़की ने अनाउंस करते हुए कहा, आई नो यू ऑल लव पॉप म्यूजिक बट दिस टाइम हमारे साथ कुछ डिफरेंट करने के लिए इंडियन सिंगर आ रही है, होप यू विल एंजॉय गाइज। उसके अनाउंस करने के साथ ही एक फीमेल सिंगर गिटार के साथ पहुंची। परफॉर्मेंस से पहले उसने कहा, ये गाना उन लोगों के लिए जिन्होंने किसी अपने को खोया है, किसी ऐसे अपने को जो उन्हें छोड़कर किसी और दुनिया में चले गए। यकीन मानिए वो यहीं हैं आपके आसपास। हाँ, ये बात अलग, उनके जाने से हमारी जिंदगी रुक सी गई है। उसकी बातें सुनकर आर्या के सामने एली का चेहरा घूमने लगा। परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी थी। कभी तो मिलेगा रास्ता तेरा मेरा, रात की है चादर में छुप गया है सवेरा, सुन वे फकीरा, नींद से उठा दे मुझे फिर से तू, जोगिया वे पीरा, हंसना सिखा दे मुझे फिर से तू, हर खुशी में है आंसुओं में भी, दूर कब तू गया है, मेरे दिल को पता है तो यहीं है यहाँ है, मेरे दिल को पता है तो यहीं है यहाँ है, तेरा मुझको रुला के फिर से मुझे हंसाना तो याद है, खुद ही तूने सताया खुद ही तेरा मनाना भी याद है, वो हंसी तेरी जिंदगी मेरी तो चुरा ले गया है, मेरे दिल को पता है तो यहीं है यहाँ है, मेरे दिल को पता है तो यहीं है यहाँ है, ओ संग तेरे जो गुजारे लम्हे वो दिन वो राताना थोड़ियाँ, नाल तेरे थी देखनी ईद और दिवाली ते लोड़ियाँ, ले लूँ तेरी मैं हर बला दिल ने और मांगा भी क्या है, मेरे दिल को पता है तो यहीं है यहाँ है,
मेरे दिल को पता है तू यही है, यहाँ है, कभी तो मिलेगा रास्ता तेरा मेरा। रात की है चादर, मैं छुप गया है सवेरा। सुन वे फकीरा, नींद से उठा दे मुझे फिर से तू। जोगी आवे पीरा, हंसना सिखा दे मुझे फिर से तू। बस बता दे तू छोड़ के मुझको कौन से घर गया है। मेरे दिल को पता है तो यही है यहाँ है, मेरे दिल को पता है तो यही है यहाँ है। जैसे ही वो परफॉर्मेंस खत्म हुई, आर्या वहां चक्कर खाकर गिर गया। अचानक उसकी हालत बिगड़ने पर ध्वनि घबरा गई तो वहीं शिवी और जिया हैरान थी। ईशान और कुछ और लोगों की हेल्प से ध्वनि उसे हॉस्पिटल लेकर गई। उसने शिवी को साथ आने से मना कर दिया था।